ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 9 श्लोक 1। श्री शुक उवाच तस्य आसन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रिनी भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नदम इति सुश्रुमा। श्रीशुक उवाच तस्य आसन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रिणि भारत सोमपीठं सुरापीठं अन्नादम इति सुश्रुमा।
शब्दार्थ। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तस्य उसका आसन थे विश्वरूपस्य देवताओं के पुरोहित विश्वरूप को शिरांसि शीर त्रीनि तीन भारत हे महाराज परीक्षित सोमपीतम सोमपान के लिए सुरापीतम मदिरा पान के लिए अन्न अदम खाने के लिए इति इस प्रकार शुश्रुमा परंपरा प्रणाली से मैंने सुन रखा है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के तीन सर सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था तो दूसरे से मदिरा पान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है।
अनुवाद अनुवाद फिर से
अनुवाद रिपीट आप लोगों को दोहराना है। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवताओं के पुरोहित विश्व रूप के तीन सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था तो दूसरे से मदिरा पान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित ऐसे मैंने विद्वानों से सुना है। तात्पर्य मैं दो कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य इसके राजा तथा अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और न उसके अन्य कार्य कलापों को ही देख सकता है क्योंकि वह स्वर्ग लोग नहीं जा सकता। यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों ने अनेक अंतरिक्ष यानों का आविष्कार कर लिया है किंतु वे अभी चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाए। अन्य लोगों की बात तो कोसों दूर है। कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता, उसे विद्वानों से सुनना चाहिए। इसलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको वही सुना रहा हूँ जो कुछ मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। यह वैदिक पद्धति है। वैदिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है क्योंकि यह प्रामाणिक सूत्रों से सुनकर ग्रहण किया जाता है। यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजैवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के तीन सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था, तो दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तो इस कार्तिक मास में आप सब भक्तों के साथ ये जो अवसर मुझे मंदिर के संचालकों ने दिया है, उसके लिए आप सबका और उन संचालक का बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृत्रासुर के आविर्भाव के शीर्षक वाला जो अध्याय है श्रीमद् भागवत का, उसके पहले श्लोक से, जिसमें देवताओं के पुरोहित विश्वरूप, मेरा नाम भी विश्वरूप है लेकिन मुझे विश्वरूप दास के रूप में संबोधित किया है, और मैं जिसका दास हूँ वो भगवान का विराट रूप है। लेकिन यहाँ पर देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के तीन सिर थे। तीन सिर, इसका एक सिर से सोमपान करते थे। सोमपान वो ऐसा मदिरा है जो स्वर्ग का मदिरा है, जो साधारण मदिरा नहीं है। दूसरे सिर से मदिरा पान करते थे और तीसरे सिर से अन्न। तो आजकल तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, किसी व्यक्ति के तीन सिर कैसे हो सकते हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। सुश्रुमा, तीन सिर। ब्रह्मा जी का कितने सिर हैं? शिव जी के कितने सिर हैं? पांच। पंचदेव, पंचमुख महादेव, राम राम हरे। रावण के कितने सिर थे? जब ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे एक दिन, तो चार मुख वाले ब्रह्मा को एंट्री नहीं दिया। द्वारपाल देव ने कहा रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, मैं बोलो, मैं बोले क्या नाम है तुम्हारा? मैं ब्रह्मा। बोले भगवान को बोलो ब्रह्मा मिलने आए। बोले वेट करो, अंदर पूछ के आते। तो पूछ के आए तो अंदर से दो लोग बाहर आए, आकर के देखा ब्रह्मा जी को, जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। छोटे ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, ये लोग क्यों हंस रहे? तो आपस में कहने लगे इनके केवल चार ही मुख हैं। तो ब्रह्मा जी बोले चार मुख? बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले चतुर्मुखी ब्रह्मा। फिर और जोर से हला ठट्ठा मार कर से बोले ये तो चार ही मुख वाला ब्रह्मा है, बस चार ही और कुछ नहीं, केवल चार ही है इसके तो। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, बोले मना कर दिया। और कोई पासपोर्ट है तुम्हारे पास? कोई आधार कार्ड या कुछ फोटो आईडी? ये तो काम नहीं करेगा चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो उन्होंने अनेक अनेक प्रयास किए। ब्रह्मा जी ने बाद में कहा कि मैं सनत कुमारों का पिता ब्रह्मा हूँ, जो चार कुमार है उसका पिता ब्रह्मा। हाँ, तब उनको एंट्री प्राप्त हुई। ठीक है आओ अंदर। भक्तों से अपनी पहचान बताई है ना, भगवान के भक्त से अगर हमारा कनेक्शन या हमारा संबंध होता है तभी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अकेले अकेले भगवान के पास जाएंगे तो भगवान उन पर कृपा करेंगे भी ना भी करें। तो ब्रह्मा जी जब अंदर जाके कहे भगवान को, कहा सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरे अतिरिक्त भी और कोई ब्रह्मा है क्या? तो ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ताली बजाई और वहाँ पर हजारों 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 ब्रह्मा प्रकट हो गए। ये केवल एक ही था जो चार मुख वाला था, बाकी कोई सौ मुख वाला था, कोई हजार मुख वाला था, कोई दस हजार मुख वाला था। और ये जो हमारे ब्रह्मा जो थे वो इन सभी ब्रह्माओं के बीच में एक छोटा सा मच्छर दिख रहा था। तो तब भगवान ने इसको प्रस्तावित किया कि देखो बहुत सारे ब्रह्मा है। जनरली भगवान को किसी का भी अहंकार पसंद नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। थोड़ा सा भी अहंकार होगा भगवान उसको नष्ट करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और भगवान उन्हीं भक्तों का अहंकार नष्ट करते हैं जिन भक्तों के प्रति उनकी कृपा है। इसलिए अगर हमें हमारे लाइफ में हमारे अहंकार को नष्ट करने का अवसर प्राप्त हो तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। सो, ये एक घटना है। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं शास्त्रों में जिसको सामान्यतः साधारण बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता, वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और फिर इंद्र आए थे उधर स्तुति करने के लिए, और इंद्र जब वहां से चले गए तो फिर वहां पर नंद महाराज आकर के पूछे ग्वाल बालों को कि क्या हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि जब सात दिन तक गोवर्धन रहा तब तो सारे ब्रजवासी भगवान के साथ थे। एक्चुअली दो लीला सबसे प्रसिद्ध है जिसमें सारे ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे हुए हो। एक तो ये गोवर्धन लीला जिसमें सारे ब्रजमंडल के सारे ब्रजवासी एक साथ इकट्ठे हुए थे, और दूसरा लीला कौन सा है? काली दमन। ये दो लीला ऐसी है जिसमें पूरा व्रज के जितने भी निवासी थे सब एक साथ उपस्थित हुए थे। बाकी तो किसी न किसी को विरह देखना ही पड़ता या किसी को सुनना पड़ता, आज ये लीला हुआ था, बस देख नहीं सकते थे वो लीला। तो जब नंद महाराज पहुंचे कृष्ण के पास और सब ग्वाल बाल भी उनके साथ थे, तो नंद महाराज ने पूछा यहाँ पर, हो नंद महाराज? बच्चों ने कहा आप लेट हो गए। क्यों? बोले यहाँ पर तो सैकड़ों सूंड वाला हाथी आया था। हाँ, bit closer. So, maybe you can get me the mic closer. Mic thoda pass me de do. So, Hare Krishna. Ab theek hai? Okay. So, हजारों हाथ सूंड वाला हाथी देखा था और फिर बोले चार मुख वाला आदमी आया था, क्या कर रहे थे? वो स्तुति कर रहे थे. फिर एक पांच मुख वाला भी आया था. फिर बोले एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पूरे शरीर पे आंखें थी, वो स्तुति कर रहा था. नंद महाराज कहा तुम मुझे कुछ फेरी टेल स्टोरी सुना रहे हो. कृष्णा के पास सब ऐसे ऐसे लोग आए थे, हजार सूंड वाला हाथी, चार मुख वाला ब्रह्मा, पांच मुख वाला एक व्यक्ति शिव, हजारों आंखों वाला इंद्र. तो ये सब बात सुनने में मुश्किल लगता है समझना. तो ऐसी कई रहस्यमय बातें होती हैं. जैसे अगर आप ब्रह्मांड की गहनता को भी देखोगे, ब्रह्मांड के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता. प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि विश्व वैज्ञानिक जो है वो लोग चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाते, चंद्रमा के लिए इतना मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं. किस चीज के लिए? ऐसे स्थान तक जाने के लिए जहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही वापस आते हैं. लेकिन ये तो फिर भौतिक चीजों की बात, भौतिक रहस्य की बात. लेकिन भगवान की दिव्य जो लीलाएं है, विशेष करके श्रीमद् भागवत का जो संदेश है, उसको समझने के लिए विद्वानों से सुनना पड़ता है. यही प्रोसेस है. परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना था सुश्रुमा श्रीमद् भागवतम में. ये सुश्रुमा शब्द अनेक बार उसका उपयोग हुआ है, अनेक बार सुश्रुमा, यही इसका साधन है. अगर आप दामोदर लीला में देखोगे तो दामोदर लीला में आपको कई ऐसी चीजें प्राप्त होगी कि जिसको समझना साधारणतया असंभव है. जैसे श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में अगर आप दामोदर कथा सुनोगे तो क्या आपको प्रलेख मिलेगा? जैसे भगवान के पास सब प्रकार की शक्ति है, सब प्रकार से वो शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने भक्तों की प्रेम से बंध जाते हैं. वो शक्ति है तो छोड़, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, है ना, लेकिन वो बंध जाते हैं. भगवान आत्मा राम है, भगवान आत्मा राम है, फिर भी उनको भूख लगी थी. जब शुरू शुरू में यशोदा माता जब मंथन कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगी है. तो भगवान तो आत्माराम है, उनको भूख क्यों लग रही है? तो भगवान को भूख लगी थी, ये भी एक रहस्य है, भूख क्यों लगी. इसके अतिरिक्त भगवान अपनी सभी इच्छाओं को बिना किसी सहायता से पूरी कर सकते हैं, या फिर वो उनको किसी कर्म की कोई स्पृहा नहीं है, फिर भी वो असंतुष्ट हुए थे. ये यशोदा माता ने उनको जमीन पर रख दिया तो बड़े असंतुष्ट हुए थे. भगवान क्यों असंतुष्ट हो सकते? भगवान को किसी चीज की कमी नहीं. फिर भगवान का जो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व वाला है, इसमें उनका रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी उनको क्रोध आया था. मुझे जमीन पर रख दिया, मेरा तिरस्कार किया, तुम्हारे कारण तो मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, तुमने बुलाया था इसलिए मैं आया था, और तुम मुझे यहाँ पर जमीन पे छोड़ दिया, तो गुस्सा किया, क्रोध किया. यदि भी भगवान सभी वैकुंठ लोकों के मालिक है, स्वामी है, फिर भी मक्खन चुराते हैं. क्यों? है ना, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं. एक बार मधुमंगल ने कृष्ण को कहा था कि ये रोज रोज तुम चोरी करते हो और पिटाई मेरी हो जाती है, क्योंकि पकड़े तो तुम तो पकड़े नहीं जाते, मैं ही पकड़ा जाता हूँ। इससे अच्छा है वो सामने जाके मांग ले तो क्या प्रॉब्लम है, किसी गोपी के पास जा कर के मांग ले और उनके पास जाके के मांग के खा लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठहरा तो ब्राह्मण मधुमंगल, ब्राह्मण तो मधुकरी कर सकता है आराम से। कृष्ण ने कहा कि मांग तो सकते और कोई मना भी नहीं करेगा खाने में, लेकिन चोरी करके खाने का जो मजा है वो कहाँ। तो भगवान चोरी करके खाना पसंद करते। फिर भगवान सब प्रकार के आनंद के सागर है, फिर भी दुखी होते हैं, है ना। और इसी तरह से भगवान सभी को बंधन मुक्ति कराने वाले हैं, फिर भी बंधे जाते हैं, है ना। जब भगवान को बांधा गया था तो देवता भगवान को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, हे मुकुंद, हे मुक्तिदाता, आप इस रस्सी को काट के फेंक दो, आप इससे बाहर आ जाओ, ये बंधन को तोड़ दो। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि भगवान चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये बंधन जो है ये मुझे बहुत पसंद है। भगवान यदि भी भगवान बंधे हुए थे, फिर भी अपने बच्चों के मित्र के साथ, बाल मित्र के साथ खेल रहे थे। कैसे खेलते थे, थोड़ा सा जो उखल है उसको उठा करके घसीट के आगे लाए, सब तालियां बजाई, वाह कृष्णा यू डिड इट, फिर थोड़ा और आगे गए और तालियां बजाई, और इस तरह से खेलते थे। दे भी भगवान खोल सकते थे बंधन, नहीं, भगवान अपने भक्तों के बंधन में, एक्चुअली ये भक्ति का जो बंधन है इस दामोदर लीला में, ये दोनों भक्तों का बंधन था, एक तो यशोदा माता उनके प्रेम का बंधन था, और दूसरा था नारद मुनि के वचनों का बंधन, क्योंकि नारद मुनि को भी भगवान ने उतने इतने महान भक्त नारद मुनि, और उन्होंने आशीर्वाद ये वरदान दिया था नलक वर मणि ग्रेव को कि कृष्ण के आंगन में तुम जन्म लोगे, तो उनके वचनों को भी सार्थक करना था, उनका उद्धार करना था। तो कृष्णा स्वयं भगवान होने के बाद भी भक्ति के माध्यम से बंध जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है इसको समझना इतना आसान नहीं है। जनरली शास्त्र में हमें प्राप्त होता है कि अलग अलग प्रमाण से लोग देखना चाहते हैं, भगवान है तो दिखाओ, सामने क्यों नहीं आ रहे, लोग अपनी आंखों से विश्वास करते हैं, मैं जो देखूंगा उसको विचार करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो केवल अनुमान के आधार पर विचार करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग, शायद ऐसा हुआ होगा, एक बिग बैंग थियरी और एक धमाका हुआ होगा और सृष्टि का सर्जन हुआ होगा, तो बड़े बड़े बिल्डर लोग भी यही करते ना, फिर एक डायनामाइट लगाओ और बिल्डिंग क्रिएट कर दो। लेकिन भगवान के तत्व को समझने के लिए शब्द प्रमाण जो है सुन करके सुनना, समझना, वो सबसे उत्तम माना गया है, सबसे उत्तम सुन करके समझना, इज द बेस्ट, द वन हु जो सुन के समझता है वो सबसे अच्छा है। क्यों ऐसा, क्योंकि ज्ञान सुन के प्राप्त होता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को अपनी आंखों से देखा है, ज्ञान को अपनी आंखों से देखा है, नहीं पता है ना। क्यों, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान सुन के प्राप्त करने वाली वस्तु है, देखने से नहीं होता है। सुश्रुमा, सुश्रुमा अनुभव, अनुभव से भी नहीं, सुनने से, केवल सुनने मात्र से, जस्ट बाय हियरिंग, सुश्रुमा, और कोई तरीका नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। जैसे इंजीनियर बनता है कोई, डॉक्टर बनता है कोई, एमए पीएचडी बनता है, तो ये लोग कैसे ये विद्या प्राप्त करते, सुन करके, है ना, देयर इज नो अदर वे, सुनना ही पड़ता है। तो ये सुनने का जो हमारा विधि है श्रवणम कीर्तनम, ये सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ने के लिए जो साधन है बड़ा सरल है, बहुत सरल। उसमें केवल सुनना है, बस नथिंग एल्स, जस्ट सुनना है, कुछ नहीं करना, केवल सुनना है बस, नथिंग एल्स। कोई भक्त कहेगा, कई बार भक्त हमें कहते हैं कि प्रभु जी हम सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है हमें, है ना। कई बार भक्त कहते हैं हम सुनते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। तो अगर सुनते हैं और याद नहीं रहता है तो एक उपाय है क्या, अधिक सुनो और सुनो, बार बार सुनो। बार बार सुनेंगे, अधिक सुनेंगे तो फिर धीरे 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 भगवान भी आपको सहायता करेंगे। भगवान देखेंगे ये व्यक्ति मुझे समझने के लिए प्रयास कर रहा है, तो भगवान बुद्धि कौन देंगे, फिर भगवान देंगे। तो सुनना चाहिए, ये हमारे हृदय की मैल को धो देता है। सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवतम पूरा भरा पड़ा है इस बात को प्रस्थापित करने के लिए। हमारे हृदय का जो कचरा है उसको ये नष्ट कर दे। हृदय तस्थो अभद्राणी विघ्नो होति, सारे कलमश को नष्ट कर देता है। हमारे हृदय में कचरा है या नहीं है, कचरा है, बहुत कचरा है। हमारा हृदय जो है वो कैसा है, कोयले से भी काला है ना। काम क्रोध लोभ तुरंत हमारे मन में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव पड़ जाए, थोड़ा अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तुरंत क्रोध है ना। हमारा अहंकार हमारे शरीर के वजन से भी ज्यादा होता है, इतना अहंकार, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सुनना चाहिए, सुनेंगे तो हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, क्योंकि अगर भगवान को समझने के लिए सुनना सबसे उत्तम है। श्रवण मंगलम, श्रवण जो है वो मंगलमय है। सुश्रुषुशब्द धानस्य, भगवान के विषय में सुनने से हमारी श्रद्धा का विकास होता है। श्रद्धा तभी बढ़ती है जब हम सुनते हैं बार बार, तभी श्रद्धा बढ़ती है। जितना अधिक सुनेंगे उतनी श्रद्धा अधिक बढ़ेगी। सो भगवान के विषय में सुनने से क्या परिणाम प्राप्त होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, हमारे हृदय की मैल दूर होगी, हम विनम्र बन पाएंगे, हम शुद्ध बन पाएंगे। तो ऐसे भगवान के विषय में सुनने से भगवत तत्व समझ पाएंगे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ही असक्त बना पार्थ योगम योजन मदाश्रय। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे विषय में जानना है तो क्या है उपाय, तत् श्रुणु, सुनो उसको, ध्यान से सुनो, सुनने से ही तुम ठीक हो समझ पाओगे। अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया था सुनने के लिए, क्या उसका योग्यता क्या था, एक तो सखा था और भक्त था, भक्तों से में सखा जी। तो अगर हम सुनना चाहते हैं तो हमारे सुनने का तरीका क्या होना चाहिए, विनम्रता के साथ, पूरे आदर दे करके, चैलेंज से नहीं, फिर हमारा अप्रिसिएशन भी होना चाहिए, अर्थात जो हम सुनते हैं उसको ग्रहण करें अच्छे से, उसके प्रति हमारा धन्यवाद भी होना चाहिए और ध्यान पूर्वक। ऐसे तो श्रवण के पूरा विज्ञान है लेकिन ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने से ही मनुष्य ये जब जन्म लेता है तो गर्भ में जो बच्चा होता है वो बच्चे का सबसे पहला जो इंद्रिय जन्म लेता है वो कौन सा होता है, कान। और जब वो उसका शरीर वो त्याग करता है तो जो सबसे अंत में जिस इंद्रिय का वो नष्ट होता है वो कौन सा होता है? कान। सबसे अंत में उसी मिलेगा। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और वो उसको भय है, उसको कोई डेंजर है, तो क्या होगा? उसको सुनकर उठा सकते हैं, बुला करके। आप सोते हो फिर भी सुन रहे हो, है ना? इसलिए कान बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रियां है और ये इसमें कचरा नहीं डालना चाहिए, ये बड़ा पवित्र वस्तु है। इसमें कचरा डालने से श्रुतव्यादिनी राजेंद्र नाम संति सहस्र, हजारों हजारों वस्तु है सुनने के लिए, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं किसी की बात सुनने को आती है ना। कि हमारे ग्राम में कथा, ये कोई भी आज सरकार में आज क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, फिर इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, तुरंत तैयार होते हम, हाँ तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के सुनने से हमारा मैल है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं तभी हम इसको समझ पाते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रयास से कोई व्यक्ति मुझे भगवान को समझ नहीं सकता। जानन्तु एव जानन्तु, भगवान के ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं तो कांग्रेचुलेशन, मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा कहता हूं कि मैं नहीं जानता भगवान को। ब्रह्मा जी खुद कह रही है, उनको बोलने दो जो बोल रहा है। लेकिन केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो सुनता है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति समझ सकता है भगवान को कि जो सुनता है भगवान के विषय में। सुनवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, केवल सुनता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भगवान को समझने के लिए। ये हमारे भगवान की जो लीला है, भगवान का जो संदेश है, ये कानों का रसायन है, कानों के लिए अमृत है। ताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, कर्ण रसायन। ये भगवान की दिव्य कथा रसायन के समान है, ये अमृत के समान है। इसलिए जितना अधिक इसको सुनेंगे, अगर हमारी भक्ति लता बीज जो है उसमें पानी कैसे पिलाया जाता है, कैसे पिलाया जाता है? श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुणाय। हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन उसको उजागर कैसे किया जाता है? सुन करके। तो इसलिए हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई पानी का जो हैंडपंप होता है, आपके वृंदावन में तो आपने देखा होगा, हैंडपंप गांव में होता है, आजकल शहरों में तो बंद हो गया। हैंडपंप में अगर पानी नहीं आता है तो क्या उपाय है? और उसके लिए कोई साइंटिस्ट को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वैज्ञानिक को बुलाने की। बड़ा आसान तरीका है, क्या उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दो ऊपर से, तो फिर तुरंत पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जितना अधिक हम भगवान के विषय में सुनेंगे, हमारा जो सुषुप्त कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत होगा। और जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो इसका परिणाम क्या आएगा? कि हमें वो सब गुण आएंगे जो एक वैष्णव में होते हैं। जैसे वो विनम्र बन जाएंगे, अहंकार से मुक्त हो पाएंगे, काम क्रोध लोभ से बचेंगे, ये सारे गुण तब धीरे 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 प्रकट होते हैं। तो सुनना चाहिए हमें अधिक से अधिक। हमारी रुचि नहीं होती है ना, जानते तो है, सुनना चाहिए सुनना चाहिए, लेकिन रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अधिकतर के इसमें देखा जाता है कि थोड़ा सा अधिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक श्रवण ज़्यादा हो जाता है, आज के दिन का कोटा बढ़ गया, इससे अधिक हम नहीं सुन सकते। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गया सब कुछ, अभी थोड़ा में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो भगवान के दिव्य कथाओं को, दिव्य संदेश को, दिव्य नामों को जितना अधिक हम सुनेंगे, और उस सुनने का तरीका भी क्या है, सुनने का तरीका है महाजनों से सुनना, महाजनों से सुनना, श्री प्रभुपाद से सुनना, हमारे विम्सिकल भक्ति से कुछ नहीं होगा, है ना। तर्को प्रतिष्ठो सुतया विभिन्न, भगवान को समझने के लिए धर्म धर्म धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो बड़ा गहन है, लेकिन कौन समझ सकता है इसको, महाजनो ये ना कथा सकता, केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो महाजनों के शरण में जाता है। हमारी मनमानी ढंग से भक्ति करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग क्या सोचते हैं, हमसे जितना होगा उतना करेंगे, हम इसी तरह से कर पाएंगे बस। अधिकतर केस में देखा जाता है कि हमारा अहंकार ही हमारे आड़े आता है, हर एक चीज में अहंकार सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा, लेकिन यह अहंकार हमारे आड़े आता है सब जगह। हम हमारे मनमानी ढंग का भक्ति करना चाहते हैं, और कई बार क्या देखा जाता है, हमें कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, हमें कोई हमारा सुपीरियर नहीं चाहिए, हम किसी को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम तभी भागवत क्लास में बैठेंगे अगर सुखदेव गोस्वामी वक्ता के रूप में आएंगे, क्योंकि हम तो परीक्षित महाराज जो ठहरे ना। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, भक्ति बड़ी आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, भक्ति आसान है, भक्ति सरल साधन है, केवल सुनना, सुनो, अधिक सुनो और विनम्रता से सुनो। और सुनने का अर्थ क्या होता है, केवल सुनो फिर एक कान इधर टनल होती है, पता है कई बार भक्तों को एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, है ना, अंडरग्राउंड टनल नहीं, एक कान से अंदर तो ठीक है लेकिन दूसरे कान से बाहर के बदले वो हृदय में जाना चाहिए, है ना। तो सुनने के पश्चात उसका चिंतन करना चाहिए, आज हमने क्या सुना था। कई बार कहते हैं कि कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु जी आज का जो क्लास था ना वो तो केवल मेरे लिए ही था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आज का नहीं, रोज का क्लास केवल आपके लिए ही होता है। हमेशा भक्तों को यही सोचना चाहिए कि जो क्लास या जो संदेश श्रीमद् भागवत में हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है ये मुझे मेरे लिए है, वो मुझे समझाने के लिए, मुझे और आध्यात्मिक विकास करने में सहायता करने के लिए ये क्लास मैं सुन रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हमें समझने को प्राप्त होती है, जो भी संदेश हमें शास्त्र से प्रभुपाद से जो भी संदेश हमें प्राप्त होता है, इस संदेश को हमारे अपने जीवन के किस तरह से उसका उपयोग में लाया जाए ये तरीका है, उसको श्रवण करो, उसका चिंतन करो और उसको व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग करो, तभी तो सुनने का फायदा है ना। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाकर के कहोगे मैं तो केवल ऐसे ही आया था आपको मिलने के लिए, दवाई ववाई नहीं चाहिए, तो क्या फायदा। अगर डॉक्टर आपको बोले कि नहीं दवाई लो तुम्हारे काम में आएगी, और फिर दवाई लेने के बाद उसको आप लेते भी नहीं, तो इसका परिणाम नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य किया इस्कॉन का संस्था का प्रचार, आप जानते हो श्री प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्होंने जब दीक्षा दिया था उस समय उन्होंने क्या कहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था ये अभय को मैं अवश्य दीक्षा देना चाहता हूँ क्योंकि उनको मेरे लेक्चर सुनने में बहुत रुचि है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन देते थे तो कई बार 2 घंटा, कई बार 3 घंटा, कई बार 4 घंटा इस तरह से प्रवचन करते थे। अगर हमें 3-4 घंटा सुनना है तो हम तो बेहोश हो जाएगा ना, तो 3-2 घंटा 3 घंटा। तो अधिकतर के इसमें क्या देखा था, उनके जो शिष्य थे वो कैसे क्या खड़े होते थे, महाराज में 1 मिनट में आया गया, थोड़ी देर के बाद महाराज बस 2 मिनट में आया गया, ऐसे करके एक बार ऐसा हुआ कि कोई नहीं था, एक वक्ता थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एक ही श्रोता थे प्रभुपाद, उस समय उनका नाम था अभय चरण। तो यही तो गुण से भक्त सिद्धांत बहुत प्रसन्न हो गए। मैं इसको अवश्य देख सकता हूँ। तो जितना अच्छा श्रवण किया प्रभुपाद ने तो क्या परिणाम आया, उतना अच्छा कीर्तन कर पाए, क्योंकि इतना अच्छा सुना उन्होंने तो अपने गुरु के मनोविष्टम को समझ करके, सुनने का अर्थ होता है उनके मनोविष्ट को समझना, उनके गुरु के इच्छा को समझना। और तुरंत जब प्रभुपाद जैसे अमेरिका गए और उन्होंने हजारों हजारों लोगों को कृष्ण भावना व्रत में जोड़ा, ये कैसे हो पाया? ये केवल तभी हो सकता है, केवल तभी हो सकता है जब सुनना है सुश्रुम प्रॉपर सोर्सेस से, सही ढंग से सुनो तभी ये हो पाएगा। प्रभुपाद ने इतना बड़ा चमत्कार किया, कैसा चमत्कार किया प्रभुपाद ने, यही नहीं कि प्रभुपाद ने ये हजारों हजारों लोगों को ये हर कोने में वृंदावन धाम को पहुंचाया, इतना ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व के हजारों हजारों अलग अलग देशों से हजारों लोगों को आज वृंदावन में लाके खड़ा कर दिया है ना। श्री प्रभुपाद के कारण आज वृंदावन में ये जो आप दिख रहे हो ना, आप 20 साल पहले देखा होगे कुछ इतने क्राउड, और आज वृंदावन में दिन ब दिन संख्या भक्तों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये तो आपको रोज अनुभव होता है ना, रोज भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने सबको इधर आकर्षित किया वृंदावन में, और इतना ही नहीं हर कोने में वृंदावन बना दिया, पूरे विश्व के हर कोने में वृंदावन बना दिया। ये संभव हो सकता है केवल सही ढंग से सुनने से, इस सुनने के माध्यम से इतनी शक्ति प्राप्त होती। जैसे भगवान ने जो रेशम की जो रस्सी थी उसको इतना शक्ति दिया कि जो कोई बांध नहीं सकता, जिसको संसार में उस रेशम की पट्टी ने, रेशम की धागे ने भगवान के उदर को, पूरे विश्व को बांध दिया, भगवान को भगवान ने ऐसा शक्ति दिया। उसी तरह से जो शिष्य श्री प्रभुपाद और उनके शिक्षाओं के आधार से गुरु को सुनता है अच्छे से, वो अकल्पनीय कार्य कर सकता है, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त हो सकती है कि जो पूरे संसार में उसके जैसा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो उदाहरण बन जाता है। कि सुनने मात्र से ये शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, अधिक सुनना चाहिए। सुनने के महाजन से सुनना, शास्त्र के आधार से सुनना और भगवान के विषय में सुनना, तो इसका परिणाम यह आएगा कि हम आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे, है ना। तो हमें सुनने का अर्थ क्या होता है, शरणागत होना चाहिए। सुनने का अर्थ होता है, भगवान कहते हैं तद्विद भी प्रणिपाते ना परी प्रश्न है न सेवा। तो क्या उपाय है, विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए और सुनना चाहिए गुरु से। और जैसे ये चीज हमें प्राप्त होती है, एक बार श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्य को कहे कि मैं भारत जा रहा हूँ, तुम लोग अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, इसको प्रचार करना। तो कुछ शिष्य थे, प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी हमें तो कुछ नहीं आता है, इतना बड़ा दायित्व प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये हम कैसे कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं आता है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा बड़ा आसान है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम सुनो, और जो सुनते हो उसी को दोहराओ, बस इतना करो तो प्रचार हो पाएगा। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हमें अथॉरिटी से सुनना चाहिए और वही बात आगे बतानी चाहिए कि जो हमने सुना है, हमारे मनमाने ढंग से नहीं, नहीं मैं मेरा ओपिनियन ये है, मेरा प्रभुपाद से दैट ओपिनियन मीन्स नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा कि ओपिनियन का अर्थ ही होता है व्यर्थ, बेकार का है, ओपिनियन नहीं चाहिए। ओपिनियन यहाँ पर बताया है श्रीमद् भागवत में, आचार्यों ने ओपिनियन बताया है, बस वही ओपिनियन को स्वीकार करना है, हमारे ओपिनियन नहीं। यही बात सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर स्थापित की है कि मैंने सुना है, अर्जुन ने भी कहा कि मैंने सुना है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी उसी तरह से, इतने बड़े आत्माराम भक्त है, वो कह रहे मैंने सुना है। तो इस तरह से अधिक सुन करके उसको अधिक प्रयास करना चाहिए प्रचार करने के लिए। तो आप सब भक्त यहाँ पर वृंदावन कार्तिक में आते हो, आप में से कुछ हर साल आते होंगे, हो सकता है कि आप में से कुछ यहीं रहते हो, लेकिन अधिक सुन करके इसका जो परिणाम क्या होगा, हमारा बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा। कितने सारे वरिष्ठ भक्त इधर आते हैं और उन सबसे कथा सुनने को प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने को प्राप्त होता है। अब फिर जब हम जाएंगे अपने अपने स्थानों में, तो दामोदर मास भगवान ने इतना व्यवस्थित प्रॉपरली अरेंज करके रखा है कि दामोदर मास के तुरंत बाद एक दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है ना, तुरंत शुरू होता है उसके बाद। तो आप सब भक्त यहाँ पर पूरा बैटरी चार्ज करके जो सुना है उसका उपयोग करो और ये भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन प्रचार के कार्य में अपने आप को जोड़िए। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जितने अधिक लोग सुनेंगे प्रभुपाद के ग्रंथों को, जितने अधिक लोग इस संदेश को समझेंगे, उतने अधिक लोग वृंदावन की महिमा को गा पाएंगे, उतने अधिक लोग वृंदावन की जो सेवा है इसको समझ पाएंगे। क्या आप चाहते हो कि जो वृंदावन का अमृत आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, क्या आप चाहते हो कि सबको प्राप्त होना चाहिए? सबका इच्छा है क्या सबको प्राप्त होना चाहिए? अच्छा, अगर सबका इच्छा है कि वृंदावन का जो अमृत है सबको प्राप्त हो, तो आप सब भक्तों को इसका दायित्व उठाना चाहिए। अगर आप दायित्व उठाएंगे, आप प्रॉपर्ली सुनेंगे, गुरु के आदेश को समझेंगे, गुरु के आदेश को समर्पित होंगे, तो फिर आपको एक व्यक्ति सहायता करेगा, कौन? स्वयं भगवान है ना। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। हमसे क्या हो सकता है? हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हमारे में अपनी कोई क्षमता नहीं है। भगवान चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं हमसे, है ना। श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं, नचाओ नचाओ मोरे नचाओ उद्भव, काष्ठेर पुतली जथा नचाओ उद्भव। प्रभुपाद कहते हैं कि हे प्रभु मुझे नचाइए, मुझे नचाइए, जैसे आप जैसे कठपुतली को नचाए वैसे नचाइए। तो हमें हमारे गुरु, हमारे परंपरा, श्री प्रभुपाद की शिक्षा, इन सब के हाथ में अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उनके हाथ में कठपुतली की तरह, और अधिक अधिक सुन करके हमारे अपने हृदय का भी शुद्ध करना है और दूसरों को भी इस मार्ग में जोड़ना है। तो आप सब भक्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये भगवान के दिव्य कथाओं को सुन करके, इस संदेश को सुन करके प्रचार करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हो। आप में से कितने भक्त हैं जो भगवद गीता मैराथन के लिए थोड़ा सा प्रयास भी करने को तैयार है? थोड़ा सा चलेगा बस, और पूरा प्रयास करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, देखिए आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भगवान देखेंगे कि इधर थोड़ा सा प्रयास, नहीं प्रभु जी नहीं, गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कोई बात नहीं, परिणाम नहीं चाहिए, माँ फले शुक्राचरण, क्या चाहिए सेवा करो बस, प्रयास करो, और ये प्रयास का परिणाम क्या आएगा, भगवान आपको सफलता देना नहीं देना किसके हाथ में है बस। तो ये विचार करके अपने आप को जोड़ दीजिए भगवान की सेवा में, और उत्साह से बड़े श्रम पूर्वक बड़ी मेहनत करके इस कार्य में जुटना। यशोदा माता बहुत मेहनत किया था, है ना, प्रभुपाद ओल्ड एज में भी बहुत मेहनत किया, कितना मेहनत किया, आपके गुरुजन भी ओल्ड एज में कितना सेवा कर रहे हैं, है ना, शरीर स्वस्थ नहीं है फिर भी सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी शरीर की भावनाओं से मुक्त होकर के इस सेवा में जुड़ना चाहिए और पूरे पूर्ण रूप से निमग्न होकर के भक्तों का संग करके अपने आप का उद्धार करना चाहिए। इस तरह से हमारी आध्यात्मिक प्रगति बड़ी आसान हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच।